ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्कृते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाच्याकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं श्लोक को पढ़ता हूं और कुछ समय के लिए थोड़ा समय है हमारे पास, उसमें भगवान का जो संदेश है भगवद गीता का उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबके पास तो गीता नहीं है शायद। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अपेक्ष दोहराएंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समययुक्ता तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समययुक्ता तमो मतः। इसका अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो ध्यान से सुनिए। अनुवाद इस प्रकार से है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहां पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वॉर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना सम्मान दिखाना तथा योग्यता सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वो नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। ये एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभोमीश्वरं न भजन्ते व जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पत्यन्तधा। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा दुर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं, फलतः वे भजन्ति तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो तात्पर्य बहुत लंबा है, तो हम इसी पर ही हाँ थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता आप रेगुलर इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो पिछले कई श्लोकों में भगवान कृष्ण इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन करते हैं। और ध्यान योग का वर्णन कृष्ण बहुत विस्तार रूप से करते हैं इस अध्याय में, कि किस प्रकार से एक योगी को अपना मन तत्रेकाग्र मनन कृत्वा यतेन्द्रिय क्रिया, कि जो योगी है उसको अपना जो मन है वो एक चित्त होकर लगाना चाहिए। फिर उसको कैसे बैठना चाहिए, कैसे स्थान को ढूंढना चाहिए, अपने नाक पर केंद्रित करना चाहिए अपनी आंखों आदि को, अपने ध्यान को, और बाह्य रूप से व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे कठिन कठिन चीजों का वर्णन भगवत गीता के इस अध्याय में कृष्ण करते हैं अर्जुन को। और अर्जुन ये सब सुनने के बाद अर्जुन सोचता है, प्रश्न पूछने लगता है कि हे कृष्णा, आपने जो ध्यान योग का वर्णन किया है ये तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। हम भी अपने जीवन में कोई व्यक्ति बात करता है तो कहते हैं ना कि थोड़ा प्रैक्टिकल बोलो ताकि हमें समझ में आ जाए और हम अपने जीवन में लागू कर सके, जिससे हमारा हित हो सके, हमारा लाभ हो सके। तो भगवान बोलते जा रहे थे इन अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग योगों का वर्णन करते जा रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि का। जब ध्यान योग का वर्णन किया तो अर्जुन ने स्पष्टता, कोई संदेह नहीं, स्पष्टता अर्जुन ने मना किया कि कृष्णा चंचलत्व मना कृष्णा प्रभाथी बलव दृढ़ कृष्णा, आप तो कह रहे हो कि ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो बिना विचलित हुए। जिस प्रकार से जो दीपक है वो जब जलता है और यदि उसको हवा आदि ना लगे तो एक जैसा जलता रहता है बिना किसी डगमगाए, तो वैसे ही आप कह रहे हो इस मन को लगाओ। तो अर्जुन कहता है कि कृष्णा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये जो मन है ये बहुत अधिक चंचल है, इतना बलशाली है, प्रमाथि मीन्स ये पागल है। अर्जुन का जैसा शक्तिशाली योद्धा इस पृथ्वी में नहीं था। इतना शक्तिशाली योद्धा, इतना सामर्थ्य जिसके पास है, और सब प्रकार से वो सामर्थ्यवान है, शारीरिक रूप से भी और बाह्य धन सौंदर्य पोजीशन या मान सम्मान आदि से भी, लेकिन ऐसा अर्जुन त्रेता युग में या द्वापर युग में, द्वापर युग के अंत में ये जो प्रोसेस है उसको क्लियरली मना करता है। अर्जुन कहते हैं कि कृष्णा मेरे लिए असंभव है, बल्कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं तूफान को भी रोक सकता हूं, इतना सामर्थ्य मुझ में है, लेकिन ये जो मन है ना, इसको मन को रोकना मेरे लिए असंभव है। हाँ देखो आजकल लोग इतने परेशान हैं, बाह्य रूप से तो परेशान है ही है, लेकिन सबसे अधिक अपने मन से परेशान है, मानसिक बहुत अधिक विपदा है, मानसिक कष्ट व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक है, इसलिए तो व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करने के लिए दौड़ता है, आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मन, भगवान कहते हैं अर्जुन मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षयो, कि व्यक्ति के बंधन का कारण ये मन है और व्यक्ति के मुक्त होने का कारण ये मन है। तो हम क्या करते हैं, हम मन से परेशान क्यों है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि सामर्थ्यशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, बुद्धि को मन ने ओवरटेक किया है, इसलिए हमने देखा मेरे मन में जैसे आ रहा है वैसे मैं कर रहा हूं। तो जो पागल व्यक्ति होता है उसका मन जैसा करता है वैसे वो कार्य करता है, लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुद्धि के द्वारा वो मन को कंट्रोल करता है, बुद्धि के पास वो गुण होता है कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो ये सारे डिसीजन ये बुद्धि ले पाती है। लेकिन हम सब अपने मन को ही अपनी पहचान समझ बैठे हैं, इसलिए भगवान गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मन तस्तु परा बुद्धि, कहते इंद्रियों से परे मन है ऊंचा, और मन से ऊंचा क्या है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा, और आत्मा से ऊपर मैं, भगवान कहते हैं। तो इसलिए बुद्धि, ये भक्ति योग क्या है, बुद्धि भक्ति योग का दूसरा नाम बुद्धि योग है, क्या है बुद्धि योग, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान इस बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। तो ये जो अलग अलग योग जिनका वर्णन भगवान गीता के पिछले अध्याय में किया है, तो ये वास्तव में एक सीढ़ी है जिसके द्वारा आप चढ़ते चढ़ते फाइनल जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पहुंचते हैं। तो ये सारे योगों का पूर्णता किसमें है, भक्ति योग में है, इसलिए कृष्ण इन सारे योगों का वर्णन करने के बाद ये जो श्लोक है इस अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक है, और ये श्लोक में कृष्ण पिछले सारे अध्याय का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं क्या करो, योगिनाम अपि सर्वेषाम, उससे पहले वाला श्लोक आप यदि देखते हैं 46, उसमें कृष्ण हमें एनकरेज करते हैं, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि योग का अर्थ क्या है, योग का मतलब क्या है, जुड़ना, कनेक्ट होना, जैसे कहते हैं ना 2 + 2 = 4, तो वैसे ही है, दो योग कितना हो गया 4, तो वैसे ही योग का मतलब है जुड़ना, कनेक्ट हो जाना, लिंकिंग प्रोसेस। तो भगवान के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, वो जो प्रोसेस है वो जो विधि है उसको कहा गया है योग, या जो भक्ति योग है। तो भगवान गीता के इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन तुम एक चीज बनने का प्रयास करो, भगवान कहते हैं तपस्वी भ्याधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिकः कर्मी भ्याक्षाधिको योगी तस्मात् योगी भवा अर्जुन। हे अर्जुन आप क्या बनो, योगी बनो। अभी हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, चाहते कि नहीं, बचपन में बच्चों के पीछे लगते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ठीक। तो हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, और हमसे जो नीचे हैं उनको भी हम एनकरेज करते हैं कि आपको लाइफ में ये बनना है, आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको PhD प्राप्त करना है, आपको सबसे बड़ा धनी बनना है, आपको मिस यूनिवर्स बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है, नहीं, तो हम सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी हमें एनकरेज कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि अरे तुम बनना है तो एक चीज बनो, अब इस संसार में हम जाए जो मर्जी बन जाए। जैसे हम मायापुर में थे कुछ महीने पहले, तो 2009 में, तो मिस दिल्ली है ना, मिस दिल्ली कोई थी, चौधरी मिस चौधरी या कोई तो थी, तो वो मायापुर आई थी। वो सोला माला का जप करती है, रोज गीता पढ़ती है, तो वो मायापुर आए और राधा माधव का दर्शन कर रहे थे। फिर उसका स्वागत किया भक्तों ने और उसको माइक दिया कि आप शेयर करो हम भक्तों के। मायापुर जो इस्कॉन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ सारे विदेश देश विदेश से भक्त आते हैं, मिलकर कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, राधा माधव की सेवा करते हैं। तो वो 3 दिन के लिए वहां थे, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में यहाँ आकर भक्तों के बीच में आकर कृष्ण कीर्तन श्रवण आदि करके मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जब मुझे मिस दिल्ली का वो क्या कहते हैं क्राउन जब धारण किया जा रहा था, तो मेरे अंदर भय आ रहा था कि ये तो अगले साल कोई और मिस दिल्ली बनेगी, है ना। तो मतलब ये जगत में अब चाहे जो मर्जी बनो, चाहे आप मिस वर्ल्ड बनो, मिस यूनिवर्स बनो, या मिस दिल्ली बनो, या राष्ट्रपति बनो, या MLA बनो, लेकिन ये सारी जो पोजीशन है वो क्या है, टेम्पररी है, बहुत तुच्छ है, या बहुत कुछ लिमिटेड समय के लिए है। और वास्तव में हम सब जैसे व्यक्ति कहते हैं मैं कुछ बन के दिखाऊंगा अपने लाइफ में, अल्टीमेटली प्रत्येक व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, भगवान। भगवान का क्या गुण है, भगवान का गुण है कंट्रोलर है भगवान। हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं अपने घर के एरिया के कंट्रोलर बनना चाहते हैं। दूसरा भगवान का एक गुण क्या है, भोक्तारा, वो एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम भोक्ता। तो हम भी एंजॉयर बनना चाहते हैं, तो चाहे हम अपने सौंदर्य के द्वारा, धन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, या अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा, हम वास्तव में कंट्रोलर और एंजॉयर बनना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम भोक्ता बनना चाहते हैं, और भोक्ता का मतलब ही है हम भगवान बनना चाहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, हम प्रवचन देने के बीच में उठ गया। उन्होंने कहा मैं भगवान हूं। अभी प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कैसे हो सकता है, तो वो व्यक्ति चिल्लाया, अमेरिकन था। उन्होंने शिष्यों को कहा कि क्या करो, जितने भी रूम के दरवाजे हैं सारे बंद कर दो, टेम्पल के दरवाजे वगैरह। और कुछ ही समय में ये जो भगवान था उसको बहुत तेज टॉयलेट या बाथरूम के लिए वो अर्ज, नेचर का कॉल बहुत तेज आ रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा दरवाजे सारे बंद करो, तो बंद कर दिए दरवाजे, लॉक कर दिए। और उन्होंने प्रभुपाद ने कहा बताओ तुम कौन हो, फिर भी वो चिल्ला रहा था भगवान हो। वो कहते प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। प्रभुपाद ने कहा बताओ, ये स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने नेचर के कॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे भगवान हो। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, तो उस समय कृष्ण वृंदावन को 11 साल की आयु में छोड़कर मथुरा जाते हैं, और मथुरा में कुछ साल रह के फिर सारे मथुरा वासियों को लेकर द्वारका में जाते हैं। ओवरनाइट रात्रि, एक ही रात्रि में द्वारका का निर्माण किया, सारे मथुरा वासियों को उठाया, और मथुरा वासियों ने सुबह आग खोली तो देखा अरे नए नए महलों में हम हैं, कहां आ गए हैं। तो उनको पता चला कि कृष्ण ने हमारे लिए है समंदर के बीच में द्वारका सिटी का निर्माण किया है। तो भगवान जब द्वारका में थे, तो द्वारका में द्वारका को छोड़कर कृष्ण सरलता से नहीं जाते थे। लेकिन एक बार एक जो राजा थे जिनका नाम था पौंड्रक, क्या नाम था, पौंड्रक, पौंड्रक और उसके मित्र थे काशीराज। काशीराज जो काशी है, काशी आज क्या है, बनारस है। तो ये काशी सिटी शिवजी ने बनाया था। जब शिवजी का विवाह हुआ, तो पत्नी ने कहा कि तुम तो सदैव पेड़ के नीचे रहते हो, और फिर आपके पास ना वस्त्र है, मेरी शादी हुई मेरे लिए ना घर है, ना कुछ सुव्यवस्था है, तो वो तंग आ गए। शिव जी को कुछ और नहीं चाहिए, शिव जी सदैव अपने पत्नी के साथ वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कृष्ण कथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने में अपना समय बिताते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बाकी चीजों को मेंटेन आदि करने में जीवन जा रहा है, असली जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण में निमग्न हो जाना। तो जब पत्नी बहुत पीछे लगी तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे शहर का निर्माण करता हूं कि सारा जगत याद करेगा। तो उन्होंने काशी का निर्माण किया, इतना सुंदर शहर। फिर ये दोनों कुछ समय के लिए वहां रहे और उन्होंने फिर से वैराग्य आया, नहीं 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 इसमें कुछ आनंद नहीं है, हमारे लिए आनंद स्थान क्या है, वही है पेड़ के नीचे चलो और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पार्वती को लिया और निकल पड़े वृक्ष के नीचे, फिर से कीर्तन कथा। तो एक दिन पार्वती ने कहा देखो अभी तो ठीक है समर सीजन है, तो विंटर भी ठीक है, पेड़ के नीचे हम काट सकते हैं। फिर पार्वती ने कहा अभी तो ये बारिश के दिन आ रहे हैं, अभी बारिश में तो पेड़ के नीचे नहीं रहा जा सकता, आप क्या करो किसी और जगह चलो, कुछ कुटिया तो बनाओ जहां रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती को उठाया और उस हाथ पकड़ा और सीधा ऊपर गए, जब बादल आ गए थे बादलों के ऊपर जाकर बैठ गए और फिर से कंटिन्यू क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए शिवजी का नया नाम पड़ा जिनका नाम हुआ जीम केतु, एक विशेष नाम है। जीम केतु का मतलब यह है कि जिन्होंने बादलों के ऊपर जाकर भगवत कीर्तन आदि कंटिन्यू रखा। तो इस प्रकार से शिवजी ने ये जो सिटी बनाया बनारस या काशी, तो वो विरक्त हो गए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है किसको दे दो, तो उनका एक भक्त था काशीराज, उसको दे दिया कि तुम अभी राजा हो यहाँ के। तो काशीराज अपने वैभव आदि से बहुत घमंडित हो गया और उसका यह मित्र पौंड्रक, ये दोनों इतने अहंकार घमंड गर्व से प्रफुल्लित हो गए कि जिन्होंने कृष्ण को चैलेंज करना शुरू किया। वो जो राजा पौंड्रक था वो अपने आप को वासुदेव कहता था, नारायण कहता था, क्या कहता था, मैं वासुदेव हूं मैं नारायण हूं। तो उन्होंने अपने एक दूत को भेजा द्वारका, वो दूत द्वारका जाता है, जाकर कृष्ण सुधर्मा सभा भवन में थे। सुधर्मा सभा भवन जब ये द्वारका का निर्माण हुआ था तो देवताओं ने कुछ, जैसे अब किसी का बर्थडे है या घर नया कोई खरीदता है तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना उसको देने के लिए, तो वैसे देवताओं ने जब एक द्वारका का ओपनिंग सेरेमनी था तो उस समय सुधर्मा सभा भवन बड़ा ऑडिटोरियम सौरभ का पूरा ऑडिटोरियम ही दे दिया था इनको, जिसमें क्या है कोई व्यक्ति उस ऑडिटोरियम में बैठेगा वो बूढ़ा नहीं होगा हमेशा, यार मृत्यु नहीं होगी। तो बहुत सारे फैसिलिटी थी, कम लोग हैं तो ऑडिटोरियम बिल्कुल छोटा हो जाता था, लोग बढ़ गए तो बड़ा बड़ा होता था, अनंत बड़ा होते जाता था। तो भगवान उग्रसेन बलराम उद्धव अक्रूर इन सबके साथ बैठे थे, तो वो मैसेंजर आया पौंड्रक का, वो कहने लगा कि हे कृष्णा मैं राजा पौंड्रक के द्वारा एक संदेश लेके आया हूं और वो संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो वो संदेश पढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हे कृष्णा तुम सबसे पहले ये स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, तुम वासुदेव नहीं हो। असली वासुदेव कौन है, मैं हूं, वो पौंड्रक कह रहा था। और वो पौंड्रक कह रहा था कि हे तुम यदुवंश में तुमने जन्म लिया है और तुमने झूठे ही अपने शंख चक्र गदा धारण किए हैं, उनको त्याग दो और आप ये स्वीकार करो और मेरे शरणागत हो जाओ। तो ऐसे लंबा लेटर वो संदेश वहां पढ़ते जा रहा था। तो ये सब सुनकर वो उसमें एक चीज लिखी थी, उन्होंने कहा कि ये जो शंख है चक्र है गदा है पद्म है ये सारे जो आप हाथ में धारण करते हो इनको छोड़ दो त्याग दो। तो ये सब सुनकर कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण ने बल्कि सारे बलराम उग्रसेन सब हंसने लगे। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा उस संदेशवाहक को, उन्होंने कहा कि ये जो राजा पौंड्रक है, जो अपने आप को भगवान समझता है, वासुदेव समझता है, नारायण समझता है, तो वो मूर्ख है। प्रभुपाद कहते फुल या रास्कल, ऐसा कृष्ण बुक में लिखते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि वो मूर्ख है, और उसको बोलो कि मैं निश्चित रूप से इस चक्र आदि को छोड़ूंगा, लेकिन किसके ऊपर छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं युद्ध करने के लिए, और तुम्हारा सर्प में काट के तुम्हारे राजधानी में गिराऊंगा। तो भगवान ने तुरंत अपने रथ सेना को लिया बलराम आदि सबके साथ, और भगवान चले गए काशी से पहले। तो काशीराज और पौंड्रक को पता चला कृष्ण आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो पौंड्रक और एक काशीराज दोनों ने कई सारी सेनाओं को लेकर बाहर आ गए। और मजे की बात क्या थी कि भगवान कृष्ण का तो रथ हमेशा पताका, उसके ऊपर पताका रहती है जिसको कहते हैं जय पताका। तो वो पताका में हमेशा गरुड़ या हनुमान का चिन्ह होता है। तो ये जो पौंड्रक था वो भी आ गया अपना रथ लेकर, लेकिन उसने भी अपने दो हाथ है, लेकिन उसने कितने हाथ धारण करके आया था, चार नकली दो हाथ लगाए थे, उसमें शंख चक्र गदा पद्मा ऐसे पकड़कर, और कौस्तुभ मणि, जब समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकला था तो भगवान ने अपने छाती में धारण किया उसको, और श्री वत्स का चिन्ह, और फिर पीतांबर, जो भी भगवान धारण करते हैं वो सारी चीजें धारण करके आ गया उनके सामने। तो कृष्ण पहली बार उस राजा पौंड्रक को देख रहे थे। कृष्ण देखकर जोर जोर से हंसने लगे, काफी समय तक हंसने लगे। फिर उन्होंने जोर से कहा कि हे पौंड्रक, तुम वास्तव में कृष्ण नहीं, तुम वास्तव में वासुदेव नहीं हो। अभी बताता हूं कि असली वासुदेव कौन है। तो भगवान ने अपना तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और उसकी गर्दन अलग कर देते हैं। तो वैसी स्थिति हम सबकी है कि हम भी भोक्ता नहीं है, हम एंजॉयर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से डेकोरेट करते हैं कि वास्तव में मैं कंट्रोलर हूं, मैं एंजॉयर हूं, और हम तो उसके फॉलोवर हैं। किसके फॉलोवर हैं? पौंड्रक के। हाँ, पौंड्रक की मेंटालिटी को हमने धारण किया हुआ है। तो कृष्णा फिर हमारे अहंकार को, हमारे जो अहम भाव है उसको खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम भी इस जगत में भगवान बनना चाहते हैं या किसी पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सारे पोजीशन क्या है? टेम्पररी है। जैसे प्रभुपाद एक श्लोक बोलते हैं, श्वान यदि प्रियते राजा, यदि कुत्ता को एक सिंहासन बनाओ और उसमें राजा के रूप में उसको बिठा दो, लेकिन कुत्ते को सामने यदि हड्डी दिखाई देगी तो सिंहासन से कूद लगाकर क्या करेगा? हड्डी चबाने लगेगा। तो हम वैसे ही हैं, हम भोक्ता नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, लेकिन हम उस टेम्पररी पोजिशन को धारण करना चाहते हैं। प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं सीआर की। पंचतंत्र में एक स्टोरी आती है सियार। एक सियार एक गांव में जाता था हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए, चोरी करने के लिए रात्रि के समय। तो वो सियार एक धोबी के घर में घुस गया और अंधेरा था, तो धोबी की पत्नी उठ गई, कुछ आवाज जोर से उसने किया, तो वैसे सियार डर के मारे भागने लगा। तो धोबी के वहां बहुत सारे ड्रम्स थे, बड़े बड़े ड्रम्स जिसमें डिफरेंट अलग अलग कलर्स का पानी था, नीला पीला काला रेड, और ये जितना अभी सोचा कि अभी तो मुझे पिटाई होगी मेरी। तो सियार दौड़ने लगा, उसने जंप लगाई तो सीधा ड्रम में, नीले ड्रम में, और वो कलर इतना पावरफुल था कि वो जैसे बाहर निकला तभी नील 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 वर्ण उसका हो गया था। अभी उसको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसको लगा मैं भीग गया हूं। तो दौड़ रहा था जहां भी रास्ता मैंने भाग रहा है जंगल की ओर। ऐसे भागते भागते जब जंगल में प्रवेश किया तो सारे प्राणी देख रहे थे कि ये नया कोई प्राणी आया है। तो सारे शेर, हाँ, और बाकी जितने भी प्राणी थे हिरण आदि सब सोचने लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, ये तो राजा है। सब उसको सलाम करने लगे, सब उसकी सेवा करने लगे। अभी इसने ठीक से देखा अपने चीज को कि मैं बदल गया हूं, तो ये अपने आप को राजा मान रहा था, क्योंकि सुबह सुबह ये घटना हुई थी तो पूरा दिन बीता, तो पूरे दिन में उसको राजा के जैसे व्यवहार उसके साथ हो रहा था। सिंह जो राजा है वो आकर उनको प्रणाम कर रहा था, उनके लिए भोजन लेके आ रहा था, उनको फैन कर रहा था। जैसे संध्या का समय होने लगा, आप मायापुर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल है बंगाल में, तो वह जैसे संध्या का समय होता है 5:30-6 बजे, तो सियार क्या करता है, उसे रहा नहीं जाता, वो अपनी जो असली आवाज है ना वो निकालने लगता है। तो अभी ये नीले कलर में था तो दूसरे दूर से कई सारे सियार भौंकने लगे, आवाज करने लगे जोर जोर से, तो ये सियार भी यहाँ आवाज करने लगा। फिर सबको पता चला कि ये क्या नहीं है, ये राजा नहीं है, ये कोई अलग नहीं है, ये तो सियार ही है। तो उसके बाद पिटाई हो जाती है, सारे मिलकर मारते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं। तो वैसी स्थिति हमारी है कि हम भी इस जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को स्थापित करना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज जैसे पहचान हम बनाना चाहते हैं इस जगत में। इसलिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी मुझे जीवन मिला है मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, लेकिन भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आपको कुछ बनना है तो क्या बनो, क्या बनो, योगी बनो। हाँ, तस्मात योगी भव अर्जुन है, अर्जुन बनना है लाइफ में कुछ तो योगी बनो। फिर आज के श्लोक में भगवान कहते फिर कौन सा योगी बनो, योगी नाम अपि सर्वेषां, हम सब बड़े बनना चाहते हैं, तो भगवान कहते हाँ वो बड़ी चीज बनो, सर्वेषां सबसे बड़ा योगी बनो। और वो योगी क्या है, भगवान का जो भक्त है। हाँ, योगी बनना है तो भगवान कहते कि ऐसा योगी बनो जो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो इस प्रकार से हम इस जगत में चाहे जो मर्जी पोजीशन को प्राप्त करें वो टेम्पररी है। हाँ, पुराणों में या महाभारत में वर्णन आता है लोमस ऋषि, कौन से ऋषि, लोमस या लोमश, जिनके लोम मीन्स बाल, तो ऐसे लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी थी, उनकी आयु इतनी लंबी थी। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि जब एक ब्रह्मा का लाइफ खत्म हो जाता है तब उनका एक बाल शरीर से गिरता है। एक बार क्या हुआ था, लोमस ऋषि वो सोचे कि अरे जीवन बहुत कम है, अभी अभी तो बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु अभी आ जाएगी, भगवान का भक्ति करने के लिए टाइम बहुत कम है, और हम सोचते कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, अभी इतनी इमरजेंसी क्या करना है, इतना जल्दी गीता पढ़ूंगा तो बाद में करूंगा क्या, पढ़ने के लिए क्या बचेगा मेरे पास। तो लोमस ऋषि ने तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे लोमस ऋषि बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मुझे लंबी आयु चाहिए, लंबा जीवित रहना चाहता हूं मैं। तो लोमस ऋषि उन्होंने कहा क्यों लंबा जीवित रहना चाहते हो, अभी हम भी तो लंबे जीना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति छोड़कर बाकी सब करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं। लोमस ऋषि ने कहा केवल आपकी सेवा करने के लिए, आपकी भक्ति आदि करने के लिए मैं लंबी आयु चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो उस समय ब्रह्मा को बड़ा अहंकार हो रहा था, ये जगत में सबसे बड़ी आयु किसी की है तो वो किसकी है, ब्रह्मा की है, बहुत लंबी आयु है। तो भगवान ने सोचा ये ब्रह्मा को अपने आयु की बड़ी बड़ा घमंड है, गर्व है, तो इसलिए उन्होंने लोमस ऋषि को ये वरदान दिया कि तुम्हारी तुम्हारे शरीर में जितने बाल हैं, उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे, एक कल्प में एक कल्प जब बीतेगा तो तुम्हारा शरीर का एक बाल गिर जाएगा। प्रभुपाद एक जगह कहते कि एक ब्रह्मा जब मरेगा तब एक बाल गिरेगा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक कल्प का मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें ये चार युग 1000 बार आते हैं, चतुर्युग, तो इतनी लंबी आयु थी उनकी कोई सोच नहीं सकते, लेकिन निरंतर एक नदी के किनारे बैठकर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। फिर बहुत उनके शिष्य थे, तो एक बार शिष्य ने कहा, गुरुदेव हम तो देख रहे हैं आप तो हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, धूप आदि हो, नदी के किनारे में बैठकर ही भगवान का भजन करते रहते हैं, हम आपके लिए ना कुटिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृंदावन में पहले साधु लोग भजन करते थे कुटिया के अंदर, अभी कुटिया की जगह किसने ले ली है? कोठियों ने ले ली है। अभी भजन करेंगे तो कहा कोठियों में भजन करेंगे, वृंदावन में भी हाँ गोस्वामी तक कुटिया बन के रहते थे। तीन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके लिए हम कुटिया बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो क्यों समय व्यस्त कर रहे हो, जीवन बहुत कम बचा है, कुटिया बनाने में बहुत टाइम खराब होगा, उससे अच्छा क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान सदैव एक बहुत बड़ी पोजीशन में हमें देखना चाहते हैं, और वो पोजीशन क्या है? भक्ति योगी की है, कि हम भक्त बने। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत साउथ इंडिया की टूर में गए थे, तो वहां रामानंद राय से उन्होंने प्रश्न पूछा था, उन्होंने प्रश्न पूछा जिसमें वो कहते हैं, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जाहर हय ख्याति। तो उन्होंने कहा, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ी कीर्ति, कीर्ति का मतलब है फेम, यश, तो हम सब फेमस होना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने पूछा, हे रामानंद राय आप बताओ सबसे बड़ा यश क्या है इस जगत में, क्या बनने से व्यक्ति सबसे बड़ा यशस्वी कहलाया जाएगा। तो रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्त बलिया, कि ये टाइटल हमें लग जाए कि मैं कौन हूं, कृष्ण का भक्त हूं, भगवान का भक्त हूं। और इसी के लिए जो व्यक्ति है उसको अपने प्रयास करने चाहिए, और उसी के लिए भगवान इस श्लोक का वर्णन करते हैं कि ऐसा जो सर्वोच्च योगी है उसके क्या लक्षण है। तो भगवान दो लक्षण कहते हैं, कहते सर्वेषां मद गते अंतरात्मनः। एक तो ये भी कहा जा सकता है, मद गते मतलब जिसकी गति मैं हूं, जिसका गोल कौन है, कृष्ण है, और अंतरात्मनः सदैव भगवान कहते कि मेरे बारे में निरंतर सोचते रहता है, मेरा स्मरण निरंतर करता है। और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय यही है, भगवान कहते यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ, जो मेरा नित्य स्मरण करता है हे पार्थ उसके लिए मैं क्या हूं, बहुत सरल हूं। और हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि लाइफ के हर मोड में कृष्ण का अधिक से अधिक हमारे जीवन में स्मरण हो, क्योंकि भगवान का आप स्मरण करते हो तो कृष्ण तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, कृष्ण का अटेंशन आप अपनी ओर खींचते हो। जैसे महाभारत के समय में कृष्ण के पास एक शीशा होता था, क्या होता था, आईना, आप देखते हो ना सुबह अपना चेहरा, तो भगवान के पास एक शीशा था, लेकिन वो शीशा बड़ा अद्भुत था, उसमें कृष्ण का जो व्यक्ति स्मरण करेगा ज्यादा उसका फोटो आता था, उसमें क्या आता था, वो व्यक्ति दिखने लगता था। तो महाभारत के युद्ध से पहले भगवान बहुत बिजी थे, तो भगवान ने वो शीशा निकाला, देखा आजकल कौन मेरा ज्यादा स्मरण करता है, हम भी सोचते हैं अरे कौन मेरे बारे में ज्यादा सोचता है, तो हम थोड़ा उसके प्रति बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर फेवरेबल हो जाते हैं। तो भगवान ने शीशा निकाला, देखा उसमें शकुनी का पिक्चर आ रहा था, किसका, कौन दिखाई दे रहा था भगवान को, शकुनी। अभी शकुनी भी स्मरण कर रहा था, शकुनी 24 आवर्स, उनको पता था कि ये पांडवों का जो शक्ति है वो कौन है, कृष्ण है। शकुनी निरंतर 24 घंटे सोचते रहता था कि कृष्ण आगे के क्या चाल चलेंगे, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कुछ ना कुछ करते रहते थे। और शकुनी को पता है कृष्ण को हटाएंगे तभी पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए, अरे शकुनी मेरा स्मरण कर रहा है। कृष्ण जब वृंदावन में थे तो मथुरा में कौन स्मरण करता था, कंस। तो हमें ऐसा स्मरण नहीं करना, इसको कहते प्रतिकूल, फेवरेबल नहीं, हाँ तो अनफेवरेबल है। तो अनुकूल भावना से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जिसी को भगवान कहते मद गते अंतरात्मना, कि मेरे बारे में सोचता है, उसका अर्थ है सदैव भगवान के नाम रोग उनके गुण उनकी लीलाएं उनका धाम और उनकी सेवा, इसके बारे में भक्त सदैव चिंतन करते रहता है। श्रील प्रभुपाद उसके उदाहरण है। और दूसरा गुण क्या कहते हैं, कृष्ण श्रद्धावान भजते, भजते का मतलब है भजन करना, उनकी सेवा करना। कैसे सेवा करना, श्रद्धा के साथ, यानी कि टेंशन फोर्सफुली, प्रभु जी का फोन आया इसलिए मैं सेवा कर रही हूं या सेवा में लगा, वो क्या सोचेंगे। अभी ये श्रद्धा के साथ नहीं है, ये प्रेम के साथ नहीं है। तो प्रेम के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं और सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे जीवन में पदार्पण करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। स्वयं कृष्ण उस व्यक्ति के लिए आ जाते हैं, जैसे रामायण में वर्णन आता है किसका, शबरी का। किसका वर्णन आता है, शबरी का नाम सुना है सबने। तो शबरी बहुत महान भक्त थी, वो वास्तव में असली योगी है। ये श्लोक का असली उदाहरण कौन है, शबरी है। वृंदावन के सारे निवासी इस श्लोक का अनुकरण करते हैं। तो ये शबरी एक शिकारी की पुत्री थी, हंटर की बेटी थी, बहुत यंग थी, सुंदर थी। और जब उसके पिता ने सोचा कि अभी इसका विवाह करना चाहिए, विवाह योग्य हो गई है, तब अभी हंटर है, शिकारी है, तो कल विवाह होने वाला था, तो एक दिन पहले थोड़ी तैयारियां होती है ना, अभी इधर मैरिज की तैयारियां चल रही है, तो मैरिज की तैयारियां हो रही थी, तो दूसरे दिन मेनू क्या होगा, सब इतने गेस्ट आएंगे उनको खिलाएंगे क्या। तो शिकारी उनके पिता थे, उन्होंने सोचा 1000 बकरे ले आए। क्या लाए उन्होंने, 1000 बकरे काट के मांस खिलाएंगे। तो शबरी एक दिन पहले शबरी ने देखा कि अरे वो बहुत डिवोश, उसका हृदय भक्ति से पूरित था, बहुत पायस थी। उसने सोचा कि मेरे शादी में ही पशुओं को मारा जाएगा, जिसको खाया जाएगा, उसका हृदय दया से भर आया, क्योंकि भक्त का ये हृदय होता है, भक्त का ये गुण क्या होता है, स्वाभाविक रूप से दया की भावना उनके हृदय में स्वाभाविक होती है। वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता, मतलब भक्त का स्वभाव यह है कि अपने से दूसरों को कष्ट ना हो, हमेशा कॉन्शियस रहता है, सावधान रहता है कि मुझसे दूसरे, मेरे कारण दूसरे को कष्ट तो नहीं है। जो भक्त है अपने मन अपने वाणी अपने शरीर से दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता, ये उसका गुण है। तो ऐसे शबरी जब सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये उचित नहीं है, सबसे अच्छा प्लान तो यही है कि अभी भागा जाए घर से, घर से क्या करे, भाग के चले जाए। तो शबरी उसी दिन दौड़ने लगे अपने घर को छोड़कर, कल तो मैरिज सेरेमनी है, विवाह कल होने वाला है, तो दौड़ने लगे जंगल की ओर। और वो चाह रहे थे कि कोई महान वैष्णव हो, साधु हो, जिनसे वो गाइडेंस प्राप्त करे, दीक्षा ले, या किसी गुरु को स्वीकार करे अपने जीवन में। तो ये एक नीच परिवार से थी, तो बड़े 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 ऋषि मुनि फॉरेस्ट जंगल में थे, ऋष्यशृंग पर्वत के आसपास वो थे रहते थे। तो वो गई जंगल में अलग अलग गुरुओं को खोजते हुए, तो किसी ने भी उसको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहा, सब सोचे थे ये तो नीच एक उसकी पुत्री है, किसकी, शिकारी की। तो फिर जब वो गए तो वहां एक ऋषि थे जिनका नाम था मातंग ऋषि, बहुत बड़े ऋषि थे, उनका आश्रम था। गए उनके चरणों में, उन्होंने कहा कि आप मुझे आश्रय प्रदान करो और अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करो और मुझे परम भगवान के बारे में उनकी सेवा आदि करने की शिक्षा मुझे प्रदान करो। तो जब मातंग ऋषि ने उसको स्वीकारा, तो बाकी ऋषि मुनि सोचने लगे कि ये मातंग का दिमाग ठीक नहीं है, ये तो निज कुल की है और उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और उसको सेवाएं दी। तो पूरे दिन एक सेकंड के लिए भी शबरी खाली नहीं रहती थी, भगवान के लिए माला बनाएगी, भगवान के लिए कुकिंग करेगी, गीता से श्लोका चांट करेगी, मतलब बहुत सारे कार्य करते थे, आश्रम को सफाई करेगी, पूरे दिन बिजी रहते थे। भक्ति का मतलब क्या है? एक्टिविटी। भक्ति का मतलब क्या है? प्रभुपाद ने जनरली बाकी जो साधु थे उन्होंने इंग्लिश में जो भक्ति शब्द है उसका अनुवाद डिवोशन के रूप में किया है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है? डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। यदि प्रेममयी सेवा नहीं है तो आप भक्ति में नहीं हो, और भक्त की पहचान है कि उसके पास सेवा है। भगवान के हम भक्त हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम कुछ ना कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे शबरी भगवान की सेवा करते जा रहे थे, उनके जो गुरु हैं मातंग बूढ़े हो गए और उनको वो शरीर छोड़ने वाले थे मातंग ऋषि। तो उन्होंने कहा कि हे शबरी, मैं तो अभी शरीर को त्याग करने वाला हूं, इससे आगे तुम क्या करो, इस आश्रम की देखभाल करो। तो शबरी उस आश्रम का देखभाल करने लगी। उनके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम इतनी सिंसियर हो कि जरूर तुम इस प्रकार से सेवा करती रहोगे और भगवान का सदैव चिंतन करती रहोगे, तो एक दिन कौन आएंगे इस आश्रम में? भगवान श्री राम। उनके गुरु ने कहा था, आयु यंग थी। अभी हमें शबरी का पता है कि वो जनरली फोटोज में क्या देखते हैं हम, वो बूढ़ी शबरी क्या कर रही है, भगवान को बेर खिला रही है, लेकिन उससे पहले वो कब से ये सब सेवाएं कर रही है, अपनी युवा अवस्था से ही। जब गुरु ने कहा कि निरंतर इस सेवाओं में मग्न रहो और सदैव उनका चिंतन करते रहो, तो इस प्रकार से वो रेगुलर वो करने लगे। एक दिन शबरी इस प्रकार से निरंतर कार्य कर रही थी, तो उनके आश्रम के पास एक सरोवर है, पंपा सरोवर। अब साउथ में जाते हो, कर्नाटका या तमिलनाडु, कर्नाटका में है पंपा सरोवर। तो वहां एक दिन पानी लाने गई, तो वहां एक ऋषि हम बैठे थे ध्यान लगाने। तो वो जब उस सरोवर से अपना मटके से पानी उठाने लगे, तो एक साधु को बड़ा क्रोध आया, कहा कि ये तो नीच है, ये पानी को स्पर्श कर रही जब हम लोग सारे यूज करने वाले हैं। उन्होंने पत्थर फेंका, मारा उसको, तो पत्थर मारा तो जिससे हम ब्लड का एक बूंद निकली और वो गिर गई उस सरोवर में, जिससे पूरा पंपा सरोवर क्या हो गया, रक्त के जैसा हो गया। फिर वो आती हैं बहुत दुखी होकर भगवान का चिंतन करने लगी, और फिर सारे ऋषि मुनि वहां एकत्रित होने लगे। उन्होंने कहा अभी हम पीने के लिए, स्नान के लिए, पूजा के लिए जल ही नहीं है, ये जल तो उस शबरी के कारण दूषित हो गया है। तो किसी ने कहा कि अरे भगवान राम इस तरफ आ रहे हैं अभी ना, तो भगवान राम को बुलाया वहां। जब भगवान राम आए तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा, हे श्री राम, आप अपने चरणों का स्पर्श कीजिए इस पंपा सरोवर के जल को, तो ये ठीक हो जाएगा। तो भगवान गए, जल का स्पर्श किया अपने चरणों से, लेकिन कुछ बदल नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही था। तो उन्होंने कहा, नहीं आपको थोड़ा स्नान भी कर लीजिए, हम कहते थे इतने से नहीं होगा, थोड़ा और कीजिए। तो भगवान गए, अभी इतने सारे ऋषि मुनि कह रहे, लक्ष्मण के साथ स्नान किया, कुछ बदलाव नहीं हुआ। किसी ने कहा ना थोड़ा पी लीजिए। तो भगवान ने पूछा, श्री राम ने पूछा कि ये हुआ कैसे। एक ऋषि ने कहा कि वो शबरी के कारण हुआ है। तो भगवान ने कहा, शबरी को बुलाओ। गए कुछ लोग, गए कहा, शबरी को आपको बुलाया है। तो शबरी ने जैसे ही भगवान राम का नाम सुना वो दौड़ने लगी, इतना उत्साह भगवान को देखने के लिए, उनका नाम सुनते ही दौड़ने लगी, इतनी तेजी से दौड़ी कि उस सरोवर के पास से जब दौड़ रही थी तो उसके चरणों में जो मिट्टी लगी थी, उस मिट्टी जाकर, थोड़ी सी मिट्टी जाकर उस सरोवर में गिरती है, उसी क्षण पूरे सरोवर का कलर नॉर्मल हो जाता है पानी का। तो भगवान श्री राम कहते, देखो मेरे भक्त की चरण धूली कितनी पावरफुल है, जो मैं इसको शुद्ध नहीं कर पाया वो शबरी के चरणों के धूली के द्वारा शुद्ध हो गया है। तो फिर भगवान राम शबरी के साथ, शबरी इनवाइट करती है अपने आश्रम में, और वहां वो रोज ये कार्य करती थी। आज कितने सालों से भगवान आने वाले हैं, रोज अपने आश्रम को क्लीन करती थी, गोबर से लेपन करती थी, रंगोली बनाती थी और रोज नए नए बेर लेके आती थी। कौन आने वाले हैं? कृष्ण आने वाले हैं। रोज ये कार्य कर रहे थे, राम आने वाले हैं। और जब भगवान राम आए तो उन्होंने इनको बैठने के लिए आसन दिया और वो सारे बेर उन्होंने लाए थे। और वो कैसे थे बेर वास्तव में? अब उन्होंने खाए हुए थे कि जो स्वीट बेर है वो भगवान राम के लिए जाए, बेस्ट चीज भगवान के लिए होनी चाहिए, ये भक्तों की भावना होती है। तो भगवान जब वो बेरों को देखा तो लक्ष्मण कहता है राम, राम को कहते कि ये मत खाओ, ये क्या है, झूठे हैं। लेकिन भगवान राम कहते नहीं, हाँ ये झूठे बेर नहीं है, ये वास्तव में बहुत उन्नत क्वालिटी के बेर है। हाँ जैसे आप कहते हो भागवतम का वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम, भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि वो अपने आप में मीठा है, लेकिन जब ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी ने बोला तो इसकी मिठास और बढ़ गई। तो आम मीठा होता है लेकिन तोता उसको खाता है तो उसकी मिठास और बढ़ती है। तो भक्त जैसे शबरी जैसे भक्त उस बेर को चेक कर रहे या खा रहे हैं, उसी को जब भगवान खाते तो उस बेर की मिठास और बढ़ गई थी। भगवान राम और शबरी उनको बेर दे रही है, भगवान राम खाते जा रहे हैं तो लक्ष्मण खड़े होकर ना देख रहे थे। लक्ष्मण को एक गर्व था कि मैं जितना राम से प्रेम करता हूं ना, ये संसार में इतना प्रेम करने वाला, इतनी सेवा करने वाला और कोई नहीं है। जब शबरी की ये सेवा, शबरी का ये प्रेम की भावना जब लक्ष्मण ने देखी तो खड़े खड़े उनके आंखों से आंसू आने लगे और लक्ष्मण गिर पड़े शबरी के चरणों में, कहा कि तुमने मुझे हरा दिया है, तुम्हारी जो सेवा की भावना है, तुम्हारा जो प्रेम है इतना अतुलनीय है कि उसकी तुलना इस संसार में नहीं की जा सकती। तो शबरी बहुत विनम्र थी। हाँ तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मद गते अंतरात्मना, कि सदैव वो मेरे अंतर रूप से मेरा स्मरण करता है, मेरे बारे में सोचता है। और श्रद्धावान भजते, कैसा भजन करता है, कैसी सेवा करता है, श्रद्धा के साथ, फुल फेथ। कार्य वही है, उनके गुरु ने कहा रोज, वो रोज वही कार्य करते थे, अपने आश्रम को क्लीन करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, रंगोलियां बनाना, भगवान के लिए बेर आदि ले आना, ये सारे कार्य रोज वही वही कार्य है। लेकिन इन्हीं कार्यों को हम यदि गंभीरता से करते हैं और सदैव उत्साहित होकर कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है और हम ये महान योगी बन सकते, भक्ति योगी जो कृष्ण चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम भी वही कार्य करते हैं, हमें भी अध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आप 16 मालाओं का जप करो, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। कोई कहेगा कि अरे वही तो हरे कृष्ण महामंत्र है, वही भगवद गीता पढ़नी है, कब तक पढ़ो। लेकिन उत्साह के साथ इन्हीं कार्यों को करते हैं, चार नियमों का हम पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सेवाओं में भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है और इस श्लोक में भगवान इसी चीज का वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई करता है समय युक्त तमामतः, तो वो वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे युक्त है, यही मेरा मत है, भगवान कहते ये मेरा मत है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का सार यही है कि हम जीवन में कुछ बनने की कामना रखते हैं, हमें कुछ बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं मुझे महान भक्त बनना है, ग्रेट डिवोटी बनना है, नहीं हमें तो भक्त बनना है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या भावना होनी चाहिए, गोपी भरतर पद कमलयो दास दासानुदास, कि हमें भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान को हम तुरंत अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वही कार्य शबरी के द्वारा हम सीखते हैं। तो इसलिए जीवन में हर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, बहुत एंजाइटीज टेंशन अपने जीवन में स्वीकार कर रहा है, क्या कुछ बनने के लिए इस संसार में, लेकिन भूल जाता है कि ये शरीर टेम्पररी है, ये शरीर कल रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, ये जगत की जो भी पोजीशन है, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ या एमएलए बन जाओ या फिर बहुत धनवान व्यक्ति बन जाओ, ये सारी चीजें कुछ समय के लिए है। हाँ, शरीर को आप छोड़ोगे तो शरीर के साथ इन सारी चीजों को भी हमें ये जगत में छोड़ना पड़ेगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अलेक्जेंडर था, उसको जब वो भारत में आया तो उसको मच्छरों के द्वारा बीमारी हो गई और मरने वाला था। तो उसने अपने जो सेनापति हैं उसको कहा कि आप मुझे क्या करो, अपनी आपकी आयु मुझे दे दो ताकि मैं वापस जाऊं और अपनी माँ को मैं देखना चाहता हूँ जाकर। उनकी माँ मरने वाली थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो उन्होंने कहा कि सेनापति को कहा कि तुम्हारी आयु मुझे दे दो ताकि तुम्हारी आयु लेकर मैं अपनी माँ को देखने के लिए चला जाऊंगा। सेनापति ने कहा यह असंभव है, मैं अपनी आयु तुम्हें नहीं दे सकता। तब उन्होंने वो तीन चीजें उस सेनापति को कही थी, कहा कि जब मैं मरूंगा तो क्या करना, हाँ, चार डॉक्टर मुझे अपने कंधे में ले जाए, और दूसरी चीज जितना भी धन मैंने इकट्ठा किया है पूरे विश्व को जीत कर, वो सारा घर से लेकर या महल से लेकर कब्रिस्तान तक गिरा दो रोड पर, और तीसरी चीज क्या, जब मुझे आप दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ को ऊपर रखो, तो सारे जगत को ये पता चले कि मेरे पास ऐश्वर्य था, मेरे पास बेस्ट डॉक्टर फैसिलिटी थी। अभी हमें क्या लगता है कि मेरे पास लंबी आयु है, मैं ये टॉनिक खा रहा हूँ, ये मेडिसिन खा रहा हूँ, योगा भी करता हूँ, वॉक भी जाता हूँ, तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ, ये हमें इल्यूजन है। लेकिन यह सिकंदर कहता है कि सारे जगत को पता चले कि इतना डॉक्टर स्कूल ले जाए, हमें लगता है कि डॉक्टर मुझे बचाएंगे, अपोलो वाले मुझे बचाएंगे या एशियन वाले मुझे बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा, वो अपने आप को नहीं बचा सकते। मैं कल एक डॉक्टर से मिल रहा था, वो कहते हैं मैं खुद ही इतना बीमार रहता हूँ, इससे आगे कि मेरे बच्चे घर के हमेशा बीमार रहते हैं, मैं उनको ठीक नहीं कर पाता। इस प्रकार की सिचुएशन है। तो हमें वास्तव में अपने लाइफ में कुछ बनने का प्रयास करना है तो भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का बेस्ट अच्छा डिवोटी बनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो फिर उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। प्रभुपाद, देखा जाए प्रभुपाद बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते थे, उनके गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप जब भी आपको धन मिले आप ग्रंथों को छापो, ग्रंथों का निर्माण करो। तो प्रभुपाद ने सोचा अपने उस युवा अवस्था में कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बिरला की तरह, टाटा की तरह, बहुत धन आएगा तो मैं किताबों को छापूंगा। लेकिन कृष्ण का कुछ और प्लान था उनके लिए, और उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी लखनऊ वगैरह, तो भगवान ने सारी चीजों को उनके जीवन से हटा दिया। हाँ, तो उनको एक श्लोक याद आ गया। हाँ, भगवान कहते हरिष्य तद धनम क्षणे, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ ना तो उसका सारा धन हर लेता हूँ, फिर सारे लोग उससे अलग हो जाते हैं। हाँ, कौन प्रेम करता है कि ऐसे व्यक्ति से जिसके पास धन नहीं हो, कोई अपनी बेटी देना चाहता है ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। हाँ, तो वैसे ही फिर प्रभुपाद ने सोचा, हाँ, कृष्ण की ये योजना है, और केवल 40 रुपए, हाँ, और श्रीमद् भागवतम, और तीसरी चीज थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तीन चीजें प्रभुपाद के साथ थी जब अमेरिका गए, 40 रुपए, श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण महामंत्र, और वहां जाकर उन्होंने पूरे विश्व को परिवर्तित किया। इतने महान योगी या महान भक्त बने कि जिनके द्वारा सारे विश्व में लोग भगवद गीता को समझ रहे, सीख रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। तो हमें भी ये मौका है भगवान का प्रिय बनने का। इस महीने में क्या करना है, इस महीने में भगवत गीता को दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे गीता के इस श्लोक में, जैसे हमने भी पढ़ा, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा योगी बनो, और वो योगी क्या है? भक्ति योगी। तो उसी भक्ति योगी को आगे 18वें अध्याय में कहते हैं ऐसा योगी जो इसका वितरण करता है इस ज्ञान का, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो हम प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान के संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। कोई व्यक्ति कह सकते कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे लोग कुछ पूछेंगे तो बोलना नहीं आता। केवल अब इच्छा करे कि मुझे कृष्ण का संदेश दूसरों तक पहुंचाना है, कृष्ण आपके लिए लोग भेजेंगे। प्रभुपाल ने इच्छा की ना, गुरु की आज्ञा का पालन करना अमेरिका जाता हूं। किसने भेजे लोग उनके पास? कृष्ण ने। एक टेम्पल है लॉस एंजलिस में इस्कॉन का, प्रभुपाल के समय उस मंदिर में 300 भक्त रहते थे, लगभग 200 ब्रह्मचारी और 100 माता जी, ऐसा बड़ा फोर्स था उस मंदिर में। सोचो मंदिर में रहने वाले भक्त कितने? 300। उस समय ऐसा कांग्रेगेशन वगैरह सिस्टम नहीं था, इस्कॉन में सब फुल टाइम डिवोटीज, चाहे वो माता जी हो या प्रभु जी हो। तो फिर जब मैराथन का समय आया तो सब लोग गए बाहर पुस्तक वितरण करने के लिए, एक माता जी को वहां रुकना पड़ा जिसको भगवान की आरती करनी थी, दोपहर को पूजा करना, भगवान के लिए भोग बनाना। तो वो सोचने लगे कि सब लोग इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं पुस्तकों का वितरण, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, प्रभुपाद को बहुत प्रिय है, तो वो सोचने लगे कि मैं अकेले ऐसे हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पीछे रुकी हूँ मंदिर में। तो ऐसी वो सोच रही थी, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय जो लैंडलाइन फोन था टेम्पल का, उसका रिंग बजा। तो ये माता जी दौड़ते हुए गई, उन्होंने फोन उठाया था, हरे कृष्णा। तो जो फोन जिसने किया था वो किसी और जगह फोन लगा रहा था, उसने सोचा, उसने कहा नहीं नहीं ये रॉन्ग नंबर है। माता जी कह रही है रॉन्ग नंबर नहीं है, हरे कृष्ण का नंबर, ये रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता, सही जगह फोन आया है। तो जैसे मौका मिला प्रीच करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू किया उस माता जी ने। तो व्यक्ति इतना प्रभावित होने लगा, वो आया और इनसे पूरा प्रभुपाद पुस्तकों का सेट लेके गया। हाँ, तो इस प्रकार से हम भी डिजायर रखते हैं हम भगवान की सेवा करने की, ग्रंथों का वितरण करने की, तो कृष्ण व्यवस्था करते हैं, कृष्ण हमारे हमें लोगों से मिलवाते हैं। लेकिन सेवा करने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे हृदय में वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम